होशे अध्याय 10। हम अपनी बाइबल में होशे अध्याय 10 को खोलें। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम फल लाए। यशाया अध्याय 6 में परमेश्वर इसराइल राष्ट्र की तुलना उस दाख की बारी से करता है जिसमें अच्छी दाखलता लगाई गई थी और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा गया था, परंतु उसने अच्छे फल नहीं दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उसका परित्याग किया गया और अंततः वो नाश हो गई। योवेल अध्याय 10 में भी परमेश्वर इसराइल की स्थिति की तुलना दाख की बारी और उसकी फलहीनता से करता है। परमेश्वर की इच्छा सदैव यही रही है कि उसकी प्रजा फल लाए। बाइबल कहती है, पश्चाताप के योग्य फल लाओ और उनका प्रदर्शन करो। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता माली है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है फल लाती है। यूहन्ना अध्याय 15 में वो कहता है कि कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो फल लाए। अतः धार्मिकता के फल लाने में इसराइल की चूक परमेश्वर द्वारा उन्हें राज्य बनाने के उद्देश्य में उनकी चूक थी। इसका परिणाम ये होगा कि वे शीघ्र ही अपने बैरियों अर्थात अशूरों द्वारा नष्ट किए जाएंगे। होशे अध्याय 10 पद 1। इसराइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे। दूसरे शब्दों में अन्य राष्ट्रों के लिए फल नहीं दिए। इसराइल राष्ट्र से कुछ भी लाभदायक उत्पन्न नहीं हुआ। होशे अध्याय 10 पद 1 में आगे लिखा है, परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। उन्होंने अपनी समृद्धि का प्रयोग अन्य देवताओं की उपासना में किया। होशे अध्याय 10 पद 1 के अंत में लिखा है, जैसे जैसे उनकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाठे बनाते गए। परमेश्वर ने उनकी भूमि को आशीषित किया कि वे समृद्ध हो। उन्होंने अधिकाधिक मूर्तियां एवं वेदियां स्थापित की। होशे अध्याय 10 पद 2। परमेश्वर ने कहा, उनका मन बटा हुआ है। अधिकांश विश्वासियों की समस्या यही है कि उनका मन बटा हुआ है। दाऊद की प्रार्थना थी, भजन संहिता 86:11, मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, अर्थात मुझे ऐसा मन दे प्रभु जो केवल तुझ में ही लीन हो, केवल तेरी ही सेवा और आराधना में लगा हो। यीशु ने भी विभाजित मन के लिए कहा, मत्ती अध्याय 6:24, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरा एक मन तो परमेश्वर की सेवा करता है और दूसरा मन शारीरिक अभिलाषाओं का भोग चाहता है। मेरा मन एक ओर तो धार्मिकता को खोजता है, दूसरी ओर संसारिकता को। याकूब कहता है कि ऐसा स्वभाव अस्थिर स्वभाव है और इस प्रकार हम परमेश्वर के सर्वोत्तम वरदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मन बटा हुआ है। यहोवा ने यरमिया के मुख से संदेश दिया, यरमिया 29 अध्याय पद 12 और 13, उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे विचार में दाऊद की प्रार्थना का हम सबों को अपनी प्रार्थना में अनुकरण करना आवश्यक है। मुझको एक चित कर कि तेरे नाम का भय मानूं, मेरे मन को अविभाजित रख कि केवल तेरी सेवा करूं, बटे हुए मन को मुझ में से निकाल दे। परंतु उनका मन विभाजित था। और होशे अध्याय 10 पद 2 और 3, अब वे दोषी ठहरेंगे, वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाठों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो राजा हमारा क्या कर सकता है। अशूरों का प्रवेश आवशंभावी है, नगर नाश किए जाएंगे और उपासना की वेदियां तोड़ डाली जाएगी। उन्होंने जो बछड़ा राष्ट्रीय उपासना के लिए स्थापित किया था वो स्मारक स्वरूप ले जाया जाएगा और वे जानेंगे कि इस विनाश का कारण है उनके द्वारा सच्चे प्रभु परमेश्वर का भय नहीं मानना। होशे अध्याय 10:4। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत की रेघेरियों में धतूरे की नाई दंड फूले फलेगा। उनके द्वारा वाचा तोड़ने का अर्थ ये था कि परमेश्वर के साथ वाचा बांधते समय उन्होंने झूठी शपथ खाई थी, अतः परमेश्वर का दंड उन पर धतूरे की नाई फूट पड़ेगा। होशे अध्याय 10:5। समरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे। परमेश्वर ने बेतेल नगर को बेतावेन नाम दिया था क्योंकि उन्होंने वहां पूजा के लिए बछड़े की स्थापना की थी। इतिहास में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान के पुत्र रहुबियाम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कामकाज संभाला, तब इसराइल ने उसे याचना की, जो जुआ तेरा पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर, और उसने उसे और बड़ा देने का निर्णय किया। इस पर उन्होंने विरोध करके कहा, राजा हमारी नहीं सुनता है, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हे इसराइल अपने अपने डेरों को चले जाओ। अब रहुबियाम के पास केवल 2 ही गोत्रों का राज्य रह गया था, अन्य 10 गोत्र उत्तरी राज्य में यरोबाम के अधीन अलग हो गए। यरोबाम के मन में एक ही भय था कि यदि उसकी प्रजा व्यवस्था के अनुसार यरूशलेम में आराधना करने जाएगी तो वे वहां मंदिर और आराधना से मोहित होकर यहूदा के राजा और दाऊद के घराने की निष्ठावान बन जाएगी। इस कारण रहुबियाम ने बेथेल में एक बछड़े की मूर्ति स्थापित कर दी और कहा, यही वो परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकालकर लाया था, तुम्हें इसी परमेश्वर की उपासना करनी है। इस कारण परमेश्वर ने उस स्थान का नाम परमेश्वर के घर से बदलकर बेतावेन कर दिया, जिसका अर्थ है बेत घर या दुष्टता का घर, बेतेल अर्थात परमेश्वर का घर। इस प्रकार बेथेल का नाम परमेश्वर ने दुष्टता का घर रख दिया। समरिया के निवासी बेतेवेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे। होशे अध्याय 10:5-8। समरिया के निवासी बेतेवेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे क्योंकि वो उनमें से उठ गया है। वो यारेब राजा की भेंट ठहराने के लिए अशूर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रेम लज्जित होगा और इसराइल भी अपनी युक्ति से लज्जाएगा। समरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा और आवेन के ऊंचे स्थान जो इसराइल का पाप है वे नाश होंगे। उनकी वेदियों पर झटबेरी पेड़ और उठ कटारे उगेंगे और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टिलों से कि हम पर गिर पड़ो। परमेश्वर उन्हें अवश्य दंड देगा और उनके उपासना स्थलों में घास उग आएगी और वहां के निवासी पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टिलों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, क्योंकि अशूरों की निर्दयता से लोग थरथराते थे। इतिहास के अनुसार उनकी निर्दयता के कारण घेरे हुए नगर आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा सामूहिक आत्महत्या कर लेते थे। अशूर अपने बंदियों की आंखें निकाल देते थे, उनकी जीभ खींच लेते थे, वे उन्हें विकलांग बना देते थे। इसी कारण वे पहाड़ों और टीलों को पुकारेंगे कि वे उन्हें छिपा लें। इसे हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का ध्यान आता है, जब छठवीं मुहर खोली जाएगी और परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। उस समय महाप्रलय होगा, तारे गिरेंगे और अंजीर के पेड़ बेवक्त फल देंगे, तथा सूरज कंबल की नाई काला हो जाएगा और चांद लाल हो जाएगा। बाइबल कहती है उस समय लोग चट्टानों और पहाड़ों से पुकार कर कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें मेमने के चेहरे से छिपा लो, क्योंकि उसके क्रोध का दिन आ गया है और उससे कौन बच सकता है। इस प्रकार परमेश्वर के दंड से छिपने का प्रयास किया जाएगा, परंतु परमेश्वर से छिप जाना असंभव है। होशे अध्याय 10 पद 9। हे इसराइल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है। गिबा बिन्यामिन के क्षेत्र में एक नगर था। वहां एक यात्री रात्रि विश्राम हेतु रुका तो वहां के निवासी उसके अतिथि सत्कारी से कहने लगे कि उसे उनको सौंप दिया जाए कि वे उसके साथ दुष्कर्म करें। इसी कारण बिन्यामिन के गोत्र का अन्यों के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें वो पराजित हुआ था। सब गोत्रों ने उस दिन शपथ खाई थी कि वे बिन्यामिन गोत्र में अपनी पुत्री कभी नहीं ब्याएंगे। इस पाप के कारण बिन्यामिन गोत्र लगभग विलोप हो गया, क्योंकि गिबा में वे पराजित किए गए थे। परमेश्वर कहता है, तुम गिबा के दिनों से पाप करते आ रहे हो। ये इस समय की घटना है जब इसराइल को राजा नहीं दिया गया था। होशे अध्याय 10 पद 9 से लेकर 11 तक। वे उसी में बने रहे। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में ना फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। ए प्रेम सीखी हुई बचिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। और तब यहोवा उनसे कहता है, होशे अध्याय 10 पद 12, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। मनुष्य का जीवन ही बोने का है। यद्यपि यहोवा कहता है बीज बो, मैं केवल बीज बोता नहीं हूं, मैं अपने लिए बीज बोता हूं। हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर का सा है, जिसमें मैं प्रतिदिन सूचना जमा करता हूं और उनका एक दिन सामने आना निश्चित है। अतः मुझे बहुत सावधान रहना है कि मैं उसमें क्या डालता हूं। यदि मैं उसमें बुराइयां डालता हूं तो उसमें से बुराइयां ही निकलकर आएंगी। पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को पत्र में लिखा, गलातियों अध्याय 6 पद 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। उसके कहने का अर्थ यही है कि आप अपने मन में क्या बोते हैं। यदि आप अपनी देह के लिए बोते हैं तो आप बुराई ही काटेंगे, परंतु यदि आप आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मिकता की बातें ही काटेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी आत्मा में परमेश्वर का वचन बो रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा की फसल ही काटेंगे। देह के लिए बोने को बहुत अवसर और प्रलोभन आते हैं, वरन सत्य तो ये है कि हमारे चारों ओर प्रलोभन है। आपको अपने मन को सुरक्षा कवच में रखना है। हमारे दैनिक जीवन में इस पतित संसार के कुप्रभाव उपस्थित हैं। आपको प्रार्थना में लगे रहना है कि परमेश्वर आपको इन अनैच्छिक कुप्रभावों से शुद्ध करे। यदि मैं देहिक अभिलाषाओं को बोता हूं तो उसी का फसल भी काटूंगा। परंतु यहोवा ने कहा, होशे अध्याय 10 पद 12, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। भूमि जो काम में नहीं आती कृषि के अभाव में कठोर हो जाती है, क्योंकि वो जोती नहीं गई है और वर्षा का पानी उसे कठोर बना देता है। ऐसी भूमि में बीज का अंकुरित होना कठिन होता है। परमेश्वर कहता है कि अपने मन की कठोर भूमि को जोतो, जिससे कि परमेश्वर के वचन का बीज आपके जीवन में अंकुरित हो जाए। होशे अध्याय 10 पद 12 में आगे लिखा है, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। निश्चय ही आज वो समय है कि हम एक चित होकर परमेश्वर की खोज करें। हमारा राष्ट्र संकट में है। इसराइल और यहूदा के पतन के चिन्ह यहां प्रत्यक्ष है। जिस परमेश्वर ने हमें सामर्थी बनाया उसी का हमने परित्याग कर दिया। परमेश्वर के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। परमेश्वर ने कहा, होशे अध्याय 10 पद 13 से लेकर 15 तक, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतारबल नगर युद्ध के समय शलमन के द्वारा नाश किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी, या गर्भवती महिलाओं को चीर डाला जाएगा। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इसराइल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा।